बारहवां नरक दर नरक, ममता कालिया, 1976, पृष्ठ संख्या 160। ममता कालिया द्वारा लिखित नरक दर नरक उपन्यास आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मध्यवर्गीय जीवन के नाना प्रकार के नरकों को बिंबायित करने वाला उपन्यास है। इस उपन्यास में बेकारी, नौकरी की तलाश में दर बदर का भटकाव, जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित व्यक्ति का मौका परस्त समझौतावादियों के सम्मुख निरंतर निरस्त होते जाना, कर्तव्य परायण लोगों को नौकरी से निकाल देना, व्यवसायिक जीवन की यांत्रिकता, उस यांत्रिकता में व्यक्ति का घर परिवार से दूर होते जाना, कामकाजी महिलाओं का दोहरे उत्तरदायित्व से टूटना, पुरुष की देहवादी दृष्टि के परिणाम जैसे अनेक मध्यवर्गीय समस्याओं को उकेरा गया है। पैराग्राफ चेंज। नारी जीवन की दृष्टि से इसमें मुख्यतः दो नारी पात्र आए हैं, उषा और सीता गुप्त। उपन्यास का नायक जगन उर्फ जोगेंद्र साहनी बम्बई के एक कॉलेज में व्याख्याता है। उसने अंग्रेजी में एमए किया था। किरण बजाज नामक एक लड़की से प्रेम करता था, किंतु बेकारी के कारण उस लड़की का विवाह अन्यत्र हो जाता है। इस प्रकार लेखिका ने यहाँ प्रकारांतर से यह भी प्रतिपादित किया है कि बेकारी के कारण मध्यवर्गीय लोगों के जीवन के समीकरण भी बदल जाते हैं। जोगेंद्र साहनी एक कर्तव्य परायण, परिश्रमी और अध्यावसायी अध्यापक है। कॉलेज में 3 साल पढ़ा लेने के बाद गर्मियों की छुट्टी में जोगेंद्र अतिरिक्त काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है और समर इंस्टीट्यूट में अध्यापन कार्य के लिए तैयार हो जाता है। उसमें दिल्ली से उषा का व्यक्तित्व अमूमन मध्यवर्गीय लड़कियों से अलग प्रकार का था। जोगेंद्र उसकी स्वतंत्र व्यक्तित्व के पैनेपन, उसकी व्यक्तित्व में अंतर्निहित असहमति और चुनौती के भाव से प्रभावित होता है, परंतु यह विवाह उन्हें फलता नहीं है। विवाह के बाद जीवन की नारकीय वास्तविकताओं से दोनों का वास्ता पड़ता है। जोगेंद्र को मासिक वेतन के रूप में 318 रुपए मिलते थे। उसमें से 100 रुपए किराए में चले जाने पर 218 रुपए में बंबई जैसे महानगर में गृहस्थी को चलाना कठिनतम प्रतीत होता है। कोर्टशिप के सपने, पृष्ठ संख्या 161, वास्तविकता की ग्रीष्मकालीन लू में झुलस जाते हैं। जोगेंद्र ने पत्नी को सोने की जंजीर लाने का वादा किया था, परंतु तंगदस्ती का आलम यह था कि वह उसे बाटा की एक जोड़ी चप्पल तक समय पर नहीं लाकर दे सकता। आर्थिक तंगी भी दाम्पत्य जीवन को कई बार खंडित करती है। विवाह पूर्व की वह तेज तर्रार उषा एक सामान्य सी गृहिणी मात्र बनकर रह जाती है। पैराग्राफ चेन। यहाँ पर लेखिका ने हमारी शैक्षिक संस्थाओं में व्याप्त गंदी घिनौनी जातिवादी राजनीति का यथार्थ आकलन भी किया है। कल्पना एक बड़े बाप की बेटी थी। जोगेंद्र जिस कॉलेज में नौकरी करता था उसकी मैनेजिंग कमेटी में कल्पना के पिता सदस्य हैं, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध उद्योगपति और राजनेता है। एक बार कल्पना कक्षा में 20 मिनट विलंब से आती है। इस पर जोगेंद्र उसे बाहर निकाल देता है। कल्पना को दंडित करने के विषय को लेकर प्रधान अध्यापक से उसकी ठन जाती है। फलतः एक अन्य मामले में उसे फंसाकर कॉलेज से निकाल दिया जाता है। जोगेंद्र और उषा को बेकारी के नरक से गुजरना पड़ता है। जोगेंद्र को इस बात का एहसास हो जाता है कि इस देश में यदि अपना भविष्य बनाना है तो किसी न किसी बड़ी तोप का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। चारों तरफ से निराश होकर वह अपनी ससुराल मथुरा पहुंचता है, जहां उसका बड़ा ही ठंडा स्वागत होता है। थोड़े दिन ससुराल में ठहर कर वह चंडीगढ़ अपने पिता के पास पहुंचता है। पैराग्राफ चेंज। नौकरी न मिलने की सूरत में वह कोई स्वतंत्र व्यवसाय के विषय में सोचता है। उन दिनों उसका ध्यान अखबार के एक विज्ञापन की ओर जाता है, जिसमें इलाहाबाद में किसी प्रेस को बेचने का उल्लेख था। जगन अपने पिता के प्रोविडेंट फंड से 5,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर शेष रकम किस्तों में चुका देने की शर्त पर प्रेस खरीद लेता है। जगन का काम तो चल निकलता है, परंतु धीरे धीरे वह अपने घर परिवार से दूर हो जाता है। व्यवसाय की यांत्रिकता में पारिवारिक जीवन से उसका रस कम होने लगता है। इस बीच में उसे एक लड़का भी हो गया है, परंतु पत्नी और पुत्र को वह समय नहीं दे पाता। अंग्रेजी में एमए जोगेंद्र, जिसकी अभिरुचियां कला और साहित्य से जुड़ी हुई थी, जो पत्नी को मित्रवत मानता था, स्त्री पुरुष के सहचर्य में जो दोस्ताना संबंधों का हिमायती था वह जोगेंद्र एक पक्का खड़ूस व्यापारी में तब्दील हो जाता है। उषा के साथ अब उसका संबंध बिस्तरबाजी तक सीमित हो गया है। जगन के लिए उषा एक आवश्यकता, एक आदत, एक वस्तु बन गई है। पति पत्नी के जीवन में जातीय भावनाओं का एक स्थान है, परंतु पति पत्नी के संबंधों में जब केवल जातीय आवेग मात्र ही रह जाते हैं तब स्त्री ऐसे संबंधों से उबने लगती है। वस्तुतः पति पत्नी के बीच की रति क्रीड़ा पारस्परिक प्रेम के परिपाक रूप में आनी चाहिए। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ एक प्रकार की ऊब घुटन और संतरास की स्थिति का निर्माण होता है। मनुष्य का मात्र मशीन हो जाना भी किसी नरक यातना से कम नहीं है। उपन्यास के अंत में जगन और उषा के सामने पुनः एक बार बेकारी की समस्या आ पड़ती है। उनके बेटे बबलू के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है और वह छोटी सी बात धार्मिक जुगनू का स्वरूप ले लेती है। पृष्ठ संख्या 162। बात का बतंगड़ बन जाता है क्योंकि नीचे मुहर्रम का जुलूस जा रहा था। एक छोटी सी चिंगारी आग को भड़का देती है। शहर में कौमी दंगे फूट पड़ते हैं और उसमें जगन के प्रेस को जला दिया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से तो जगन की बेकारी की समस्या है, परंतु उषा का जीवन भी जगन से ही जुड़ा हुआ है। नगरीय परिवेश के परिप्रेक्ष्य में मध्यवर्गीय नारी को किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है उसका अच्छा दिग्दर्शन प्रस्तुत उपन्यास में हुआ है। पैराग्राफ चेंज। जगन और उषा इलाहाबाद आते हैं। उसके साथ एक दूसरी समानांतर कथा जो जुड़ती है वह है विनय गुप्ता और सीता गुप्ता की। सीता एक सुशिक्षित महिला है। इलाहाबाद के एक विद्यालय में वह अध्यापिका के पद पर कार्य करती है। उसमें अध्यापन के प्रति प्रतिश्रुतता का भाव विद्यमान है। अच्छे अध्यापन के लिए शिक्षक को भी अध्ययनरत रहना पड़ता है। सीता गुप्त न केवल इस तथ्य को समझती है अपितु अपने जीवन में भी उतारती है। अपने व्यवसाय के साथ न्याय करने के लिए वह घंटों अध्ययन में डूबी रहती है। छात्राओं के लिए नोट्स तैयार करती है। स्वयं लेखिका के शब्दों में इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इतना अध्ययन शायद कोई शोध छात्र भी न करते होंगे जितना वह लेक्चर तैयार करने में करती थी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ ममता कालिया, नरक दर नरक, पृष्ठ संख्या 170। उसका मुख्य विषय संस्कृत था, पर तैयारी करके वह हिंदी की कक्षाएं भी लेती थी। पैराग्राफ 3। यहाँ पर ममता कालिया ने यह घोषित किया है कि ज्ञान निष्ठा और अध्यापन निष्ठा से संपृक्त विवाहित महिला को दोहरा उत्तरदायित्व वहन करना पड़ता है। शिक्षित और नारी चेतना संपन्न महिला घर में बैठे रहने की अपेक्षा अपने उपयुक्त कोई नौकरी पेशा चुन लेती है। प्रारंभ में अति उत्साह में वह घर गृहस्थी तथा नौकरी के बोझ को उत्साहपूर्वक उठा लेती है, परंतु कुछ ही वर्षों में उसका उत्साह बुझने लगता है। दोहरा बोझ उसे मानसिक तनाव तथा असमय की वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। वस्तुतः पश्चिम में जहां महिलाएं नौकरी करती हैं वहां घर गृहस्थी के बोझ को पति पत्नी परस्पर बांट लेते हैं। सीता गुप्ता का पति विनय न केवल इस मामले में असहयोगी है परंतु शंकाशील स्वभाव का भी है। वह सीता की एक एक मिनट का हिसाब रखता है। सीता स्कूल से कब छूटती है और रिक्शे में पहुंचने में उसे कितना समय लग सकता है, इन सब बातों को लेकर विनय उस पर फवतियां कसता रहता है और उसे मानसिक यंत्रणा देने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। वह उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाता है। तीन बच्चों तथा घर गृहस्थी के बोझ के साथ नौकरी के उत्तरदायित्वों को निभाना अपने आप में बड़ा कठिन व दुखावह है। उस पर पति महोदय की ऐसी लांछनाएं अतः सीता घर छोड़ने का निश्चय करती है। इस बात पर विनय महोदय थोड़े ढीले पड़ते हैं क्योंकि तनख्वाह के रूप में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वह खोना नहीं चाहते। बिल्कुल इस प्रकार की स्थिति मेहरुन्निसा परवेज कृत अकेला पलाश नामक उपन्यास की तहमीना की भी है। उसका पति भी विनय की तरह घर परिवार की ओर से लापरवाह है। विनय के असहयोगी शंकाशील और क्रूर स्वभाव के कारण तथा नौकरी और घर गृहस्थी के दोहरे बोझ के कारण सीता की कामेक्षा कम हो जाती है। इस बात को लेकर भी उसका पति शंका करता है कि शायद वह दूसरे पुरुषों के द्वारा अपनी यौन तुष्टि कर लिया करती होगी। पृष्ठ संख्या 163। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जहां स्त्रियां दोहरे उत्तरदायित्वों से गुजरती हैं, वहां क्लांति और थकान के कारण उनमें जातीय इच्छा क्रमशः कम होती जाती है। दूसरे, सीता 3 बच्चों की माँ भी है। यदि विनय का व्यवहार स्नेहपूर्ण होता तब भी कुछ गनीमत होती, परंतु इस विषय में तो विनय मध्ययुगीन मानसिकता के शिखर पर बैठा हुआ सा प्रतीत होता है। फलतः सने सने ही मनोवैज्ञानिक मानसिक ठंडेपन की तरफ जा रही सीता की स्थिति भी किसी नरक से कम नहीं है। जहाँ जातीय जीवन व्यक्ति में उत्साह, उमंग और स्फूर्ति का कर्म करते हैं, वहाँ आंतरिक प्रेमोष्मा के अभाव में जब वह यांत्रिक होने लगता है, तब स्त्री को वह एक तीसरे प्रकार का बोझ लगने लगता है। इस प्रकार आनंदमय क्रीड़ा मशीनी आतंक में तब्दील हो जाता है। शिक्षित, सुंदर, व्यक्तित्व संपन्न महिला अपने पति के सहयोग की कामना करती है। केवल शारीरिक क्रीड़ा उसे अपने अपमान सी प्रतीत होती है, क्योंकि वह केवल इस्तेमाल की वस्तु नहीं बनना चाहती। इस संदर्भ में डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ के यह विचार चिंतनीय होंगे। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, कामकाजी पत्नी तत्काल समर्पण को व्यक्तित्व की चुनौती समझती है, अपने अस्तित्व को अर्थहीन समझती है। इस तरह पत्नी की सेक्स संभोग के प्रति उदासीनता दाम्पत्य जीवन के समंजन को बर्बाद कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ क्योंकि समय एक शब्द है, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, पृष्ठ संख्या 509। इस प्रकार उषा और सीता की समस्याओं में हमें वैपरीत्य मिलता है। उषा का पति जगन व्यवसाय में डूबकर पत्नी को भूलता जा रहा है, और विनय की पत्नी सीता नौकरी और घर गृहस्थी के दोहरे बोझ से दबकर पति से विमुख होती जा रही थी। दोनों के अपने अपने नरक हैं, अपनी अपनी यातनाएं हैं। सांसारिक और पारिवारिक जीवन में व्यक्ति का योग करते जाना एक नए प्रकार के अजनबीपन के बोझ को गहराता है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति का यह अकेलापन उसका अपना एक नरक है।